सामवेदीय ब्राह्मण एक, तांड्य महाब्राह्मण पंचविंश प्रौढ़, उपलब्ध ब्राह्मण अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। सामवेद के उपलब्ध ब्राह्मण 8 हैं। सायण ने इनका उल्लेख इस प्रकार से किया है, अष्टौ हि ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़ं ब्राह्मणमादिमं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः साम विधिर् भवेत् आशेयं देवताध्यायो भवेद् उपनिषद् ततः संहितोपनिषद् वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। एक, तांड्य ब्राह्मण कोष्ठक में प्रौढ़ पंचविंश, दो षड्विंश, तीन साम विधान कोष्ठक में साम विधि, चार आर्षेय, पांच देवताध्याय, छह उपनिषद कोष्ठक मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद कोष्ठक बंद, सात संहितोपनिषद, आठ वंश ब्राह्मण, ये कौथुम और रणायनीय शाखा से संबद्ध हैं। जैमिनीय शाखा से संबद्ध तीन ब्राह्मण हैं, ये हैं एक जैमिनीय ब्राह्मण, दो जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण, तीन जैमिनी उपनिषद कोष्ठक में छांदोग्य ब्राह्मण। उपर्युक्त आठ ब्राह्मणों में से केवल प्रथम और द्वितीय अर्थात तांड्य और षड्विंश को पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। शेष सामविधान आदि छह ब्राह्मण अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। ये वेदों की अनुक्रमणिकाओं के तुल्य लघुकाय ग्रंथ हैं, अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा गया है। सामवेदी अनुपलब्ध ब्राह्मणों का विवरण पीछे दिया जा चुका है। एक, तांड्य ब्राह्मण के रचयिता। तांड्य ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है। यह विशालकाय ग्रंथ है, अतः इसे ब्राह्मण के स्थान पर महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता सामवेदी आचार्य तांडी माने जाते हैं। उनके द्वारा विरचित होने के कारण इसे तांड्य तंडिन ब्राह्मण कहा जाता है। जैमिनीय ब्राह्मण से में इसे तांड्य कहा गया है। तदु होवाच तांड्य, आपस्तंभ श्रौत सूत्र में इसे तांडियम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में तांडिन और शाट्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है। दो, तांड्य ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय। तांड्य ब्राह्मण 25 अध्यायों में विभक्त हुआ है, अतः इसे पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। 25 अध्याय ऐत्रेय आदि के तुल्य 5 अध्यायों की पंचिका है। इसमें 5-5 की 5 पंचिकाएं हैं। इसका संबंध सामवेद की कौथुम शाखा से है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। इसमें ज्योतिष टोम से प्रारंभ करके 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। इसमें इसी के अंतर्गत स्तोत्र, स्तोम, उनकी विस्तुतियों आदि का विस्तृत वर्णन है। यह उद्गाता के कार्यों के विस्तृत विवेचना के कारण आदरणीय ब्राह्मण माना जाता है। अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय ये हैं। अध्याय 1, उद्गाता के लिए पठनीय मंत्रों का निर्देश। अध्याय 2 और 3, त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तुतियाँ। अध्याय 4 और 5, वर्ष भर चलने वाले गवामयन याग का वर्णन। अध्याय 6 से 9, 12वें खंड तक ज्योतिषोम, उक्त और अतिरात्र का वर्णन। 12 से आगे के खंडों में विभिन्न प्रायश्चितों की विधियां हैं। अध्याय 10 से 15, द्वादशाह यागों का वर्णन। अध्याय 16 से 19, एकाह यागों का वर्णन। अध्याय 20 से 22, अहिन, 2 से 12 दिन वाले यागों का वर्णन। अध्याय 22 से 25, सत्र यागों का वर्णन। इसमें कुल 178 सोमयागों का वर्णन है। अहिन याग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए है। इसमें दक्षिणा दी जाती है। यजमान अनेक हो सकते हैं। सत्र याग 13 दिन से लेकर वर्षों तक चलता है। इसमें ब्राह्मण यजमान होंगे, दक्षिणा नहीं दी जाएगी। 17 से 24 तक यजमान हो सकते हैं। यह सोमयाग का ही अंग है। 3, तांड्य ब्राह्मण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। 1, रचना वैशिष्ट। तांड्य ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित और सुसंपादित है। इसकी भाषा शैली, रचना सौष्ठव और वाक्य विन्यास सुनियोजित है। इसकी प्रत्येक पंक्ति ही नहीं अपितु प्रत्येक शब्द नया तुला है। इसमें न अनावश्यक विस्तार है और न अत्यंत संक्षेप। अतएव धर्म और आचार संहिता के लिए यह सुविख्यात है। 2, सोमयाग। इसमें सोमयागों का सांगोपांग वर्णन है। 3, सामगान की प्रक्रिया। ऊह और ऊह्य गानों का विशद विवेचन के लिए तांड्य ब्राह्मण अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। सभी सामो स्तोत्रों और उनकी विस्तुतियों के लिए इसमें अत्यंत उपादेय सामग्री प्राप्य है। चार व्रात्य यज्ञ, इसमें व्रात्य यज्ञ विशेष महत्वपूर्ण है। यह संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होता है। यह एकाह याग होता है। इसमें सांस्कृतिक दृष्टि से बहुमूल्य सामग्री मिलती है। ऋत्विजों को दक्षिणा में उष्णीश, प्रतोद, धनुर्दंड, इक्के जैसा रथ, काले किनारे की धोती, रजत निष्क चांदी का गले का आभूषण मिलता था। अन्यों को लाल किनारे की धोती, दो जूते और मृग चर्म आदि। पांच, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सामग्री। भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें विपुल सामग्री है। कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को स्वर्गतुल्य बताया गया है। सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान विनशन और उसके पुनः प्रकट होने के स्थान प्लक्ष प्रस्त्रवण का वर्णन है। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडव वन, कुरु, पांचाल एवं मगध जनपद आदि का उल्लेख है। निषाद आदि जातियों का भी उल्लेख मिलता है। छह, यज्ञ का महत्व। इसमें यज्ञ का बहुत महत्व वर्णित है। यज्ञ न करने वालों को निकृष्ट और बद्ध बताया गया है। दो, षड्विंश ब्राह्मण या कौथुम शाखीय सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। यह पूर्वोक्त पंचविंश के स्थान पर षड्विंश ब्राह्मण है, अर्थात इसमें 25 के स्थान पर 26 अध्याय है। यह पंचविंश ब्राह्मण का ही परिशिष्ट समझा जाता है। सायण ने अपने भाष्य में इसे तांड्य कशेष ब्राह्मण अर्थात तांड्य का एक भाग या परिशिष्ट कहा है। तांड्य ब्राह्मण में सोमयाग के जिन विषयों का वर्णन नहीं हुआ है उनका इसमें विवेचन है, अतः इसे तांड्य का परिशिष्ट समझा जाता है। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं, इनके अवान्तर भेद खंड हैं। इसके प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है। अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वप्न और अपशकुनों आदि के साथ ही विभिन्न उत्पातों की शांति के लिए विभिन्न याग आदि का वर्णन है। यह ब्राह्मण तात्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इन विषयों को लेकर परकालीन धर्मशास्त्रों आदि में प्रायश्चितों और विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन है। भूव और स्व इन तीन महाव्यहृतियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन है। अविचार यज्ञों के समय ऋत्विज लाल पगड़ी और लाल धोती पहनते थे। ब्राह्मण के लिए संध्योपासना का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला बताया गया है। षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञ विधानों के प्रसंग में 24 आख्यायिकाएं आई हैं। इनमें इंद्र और अहिल्या वाला आख्यान प्रसिद्ध है। 3, साम विधान ब्राह्मण। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यह ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से सर्वथा भिन्न है। इसमें जादू टोने से संबद्ध सामग्री बहुत है। विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ ही विभिन्न अनुष्ठानों का भी विधान है। इसमें प्रतिपादित विषय अधिकांशतः धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। साम विधान ब्राह्मण में श्रौत यागों के साथ ही प्रायश्चित विधान, कृच्छ आदि व्रत, काम्य याग और अभिचार कर्मों का वर्णन है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इनमें वर्णित विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रपाठक 1, प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम प्रशंसा, साम स्वरूप के देवता, देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्न्याध्यान के नियम, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, सौत्रामणि आदि यागों का वर्णन, श्रौत सूत्रों के साथ देव प्रत्यर्थ, सामगान, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चित का वर्णन। प्रपाठक 2 और 3, काम्य कर्म, रोग निवृत्ति एवं क्षेम के लिए विभिन्न प्रयाग, अभिष्ट विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अभिचार, शांति, युद्ध विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग दिए गए हैं। अंत में साम संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन, अध्ययन के अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन है। साम विधान ब्राह्मण की कतिपय विशेषताएं। इसमें श्रौत और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। इसमें अभिचार कार्यों के लिए सामगान के साथ कतिपय अनुष्ठानों के विधान हैं, जैसे शत्रु को भगाने के लिए चिता की भस्म शत्रु के घर या बिस्तर पर डालना, शत्रु को मारने के लिए शत्रु की आटे की मूर्ति बनाकर उसका चाकू से गला काटना और उसे आग में डालना, इसी प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए तथा राजयक्षमा दूर करने के लिए कुछ अनुष्ठान दिए हैं। 2, अथर्वेद में तो अभिचार के मंत्र हैं, परंतु इसमें अन्य वेदों के मंत्रों का भी अभिचार कर्मों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ऋग और यजु के मंत्रों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र ग्रंथ ऋग विधान और यजुर्विधान है। 3, इस ब्राह्मण में न पुनरुक्तियां हैं और न अत्यंत संक्षेप। यह ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों के बीच की शैली में लिखा गया है। 4. इसमें काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का विधान विशेष रूप से है। 5. इसमें विविध व्रतों का प्रारंभिक रूप मूल प्राप्य है, जैसे किसी इष्ट सिद्धि के लिए कमर तक जल में खड़े होकर किसी विशेष मंत्र का जप करना। 6. यह ब्राह्मण धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका है। इसमें विविध पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन। यह ब्राह्मण पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। 6. यह ब्राह्मण धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका है। इसमें विविध पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन है। यह ब्राह्मण पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। 4. आर्षेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो 82 खंडों में विभक्त हैं। यह ब्राह्मण एक प्रकार से आर्ष अनुक्रमणी का काम करता है। इसमें सामगान के ऋषियों की विस्तृत सूची नहीं है। इसमें सामगानों के नाम तथा उनके अन्य नामों का उल्लेख है, जिन ऋषियों ने जो गान प्रचलित किए थे या जो उन गानों के प्रवर्तक हैं, उन गानों के नाम उन ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं, उनका इसमें विवरण है। इस दृष्टि से यह ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ब्राह्मण विशेष उपयोगी है। सामगान के 4 प्रकारों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। आर्षेय ब्राह्मण में इनमें से केवल 2 प्रकार के गानों का वर्णन है। यह है ग्रामगेय 2, अरण्यगेय। इसमें ऊह और उह्य गानों पर विचार नहीं किया गया है। सामगानों का नामकरण प्रायः 5 आधारों पर हुआ है। इनके कारण सामगानों की 5 कोटियां हो गई हैं। 5 आधार ये हैं, उन ऋषियों के नाम पर जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया था। 2. ऋचा प्रारंभिक पदों के आधार पर, 3 गान के अंतिम भाग के आधार पर, 4 प्रयोजन के आधार पर जैसे रक्षोधन, 5 इनसे भिन्न अन्य आधार पर जैसे विंक आदि सामगान। इनमें से प्रथम कोटि के नाम साक्षात्कर्ता ऋषियों के नामों का उल्लेख करता है, जैसे अग्ने वैश्वानरस्य रक्षोधनम अत्रेर्वा वसिष्ठस्य विंकम, अर्थात वैश्वानर अग्नि का रक्षोधन सामगान, अत्रि या वशिष्ठ का विंक सामगान। आर्षीय ब्राह्मण ऋषि के नाम के साथ अनेक गोत्र नाम का भी उल्लेख कर देता है, जैसे हविष्मतगान के ऋषि हैं हविष्मान, इनका संबंध अंगीरा गोत्र से है। अधिकांश विद्वान का मत है कि आर्षीय ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण की ब्राह्मण एक ही ग्रंथ के 2 भाग हैं। एक में सामगान के ऋषियों का वर्णन है और दूसरे में देवों का। आर्षीय ब्राह्मण में ग्रामगीय गानों का उल्लेख सामवेद संहिता के क्रम से है। 5. देवताध्याय ब्राह्मण। आकार की दृष्टि से यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 4 खंड हैं, कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड ही हैं। इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। खंडों के अनुसार वर्ण विषय इस प्रकार हैं। खंड 1, इसमें विभिन्न सामों के संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन देवताओं का उल्लेख है, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, सरस्वती और इंद्राग्नि। इन देवों से संबद्ध विभिन्न सामगानों का भी उल्लेख है। खंड 2, इस खंड में छंदों के देवता और उनके वर्णों का विशेष वर्णन है। खंड 3, इस खंड में सामवेदीय छंदों के नामों की निरुक्तियां दी गई हैं। इन निरुक्तियों में से अनेक निरुक्तियों को यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण किया है, जैसे गायत्री गायते स्तुति कर्मण, अर्थात स्तुति अर्थ वाले गाय धातु से गायत्री शब्द बना है। इसी प्रकार निरुक्त में अनुष्टुप, उष्णीह, ककुभ, जगति, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप आदि के निर्वचन दिए हैं। खंड 4, इसमें गायत्र साम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों की देवता रूप का वर्णन है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसका निर्वचन वाला खंड अति महत्व का है। इसमें निर्वचन बहुत प्रामाणिक ढंग से दिए गए हैं। उपनिषद ब्राह्मण। इसका दूसरा नाम छांदोग्य ब्राह्मण है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। 1. मंत्र ब्राह्मण। प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8 खंड हैं। इनमें गृह संस्कारों से विनियुक्त मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों का ही गोभिल और खाद्य गृह सूत्रों में विभिन्न गृह संस्कारों में विनियोग है। इन मंत्रों की संख्या 268 है। प्रथम प्रपाठक में गर्भाधान, सीमंतो, नयन, चूड़ा, कर्म, उपनयन, विवाह और समावर्तन के मंत्र दिए गए हैं। द्वितीय प्रपाठक में भूतवली, आग्रहायणी कर्म, पितृपिंड दान, देव बलि, होम, दर्श, पूर्णमास, आदित्योपस्थान, नवगृह प्रवेश, स्वस्तियन और प्रसाद प्राप्ति आदि के मंत्र हैं। इसमें अन्य संहिताओं और ब्राह्मणों से भी मंत्र लिए गए हैं। अनेक मंत्रों की भाषा सरल और रोचक है, जैसे लाजा होम का मंत्र, इयम नारी उपब्रुते अग्नौ लाजा नापवंती दीर्घायुरस्तु मे पति शतम वर्षाणि जीवतु, लाजा होम में पत्नी पति के दीर्घायु की कामना करती है। छांदोग्य ब्राह्मण पर दो व्याख्याएं हैं, एक गुण विष्णु कृत छांदोग्य मंत्र भाष्य, दो शायण कृत वेदार्थ प्रकाश। गुण विष्णु ने ब्राह्मणों उपनिषदों निरुक्त मीमांसा आदि के बहुत उदाहरण दिए हैं। गुण विष्णु ने ऋषि देवता छंद और विनियोग का विस्तृत विवरण दिया है। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने स्थाणु रयम भार हार किलाभुद को उद्धृत किया है, जो अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है और जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। शायण ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का अनुकरण किया है, शायण का भाष्य अधिक विस्तृत है। दो छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक छांदोग्य उपनिषद हैं। यह कौथुम शाखा से संबद्ध है। शंकराचार्य ने इसे तांडिनाम उपनिषद अर्थात तांड ब्राह्मण से संबद्ध उपनिषद कहा है। इसकी विषय वस्तु सुव्यवस्थित है, वर्णन शैली मनोरम है, संपूर्ण ग्रंथ में क्रमबद्धता है। इसमें तत्व ज्ञान और उसे संबद्ध कर्म और उपासनाओं का सुंदर वर्णन है। श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है, अतः इसका महत्व बढ़ गया है। इसके प्रथम अध्याय में ओमकार का महत्व और उसकी उपासना का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में विविध सामो की उपासना का वर्णन है। तृतीय अध्याय में सूर्योपासना, गायत्री का महत्व, ब्रह्म यज्ञ, प्राण और मन का विवेचन है। इसी प्रकार अन्य अध्यायों में विविध उपासनाओं का विवेचन है। सामगान के दार्शनिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। ओमकार और साम के रहस्यात्मक स्वरूप का विवेचन किया गया है। किसी कामना से यज्ञानुष्ठान और सामगान करने वालों की कड़ी आलोचना की गई है। इसमें अनेक आख्यानों का भी वर्णन है, यथा दालभ्य और प्रवाहण का संवाद, सत्यकाम का आख्यान, अश्वपति का आख्यान, राजा जानश्रुति और रैक्व का उपाख्यान, उपस्थि का आख्यान, उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद, सनत कुमार और नारद का संवाद आदि। सात संगीतोपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय गान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संगीतोपनिषद का अर्थ है संहिता के उपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ संहिता शब्द का अर्थ साम वेद संहिता आदि नहीं है, यहाँ पर संहिता शब्द का अर्थ है साम के गान की संहिता अर्थात सातत्य। शास्त्रीय गान में सप्त स्वरों का मंद्र मध्य और तार स्थानों में समन्वय अत्यावश्यक है। इस समन्वय के बिना गान में सातत्य नहीं होता। सायण के अनुसार यह समन्वय ही संहिता है। इसके रहस्य का प्रतिपादन करना इस ब्राह्मण का उद्देश्य है। सायण का कथन है, सामनाम सप्त स्वरा भवन्ति, मंद्र मध्य ताराणि वाच स्थानानि भवन्ति, एतेषां यः सन्निकर्षः सा संहिता। सामगान के वैज्ञानिक पक्ष के उद्घाटन के लिए यह ब्राह्मण अत्यंत महत्वपूर्ण है। संहितोपनिषद ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय। इस ब्राह्मण में 5 खंड हैं जो सूत्रों में विभक्त हैं। इनका संक्षिप्त विवरण यह है। खंड 1, इसमें 3 प्रकार की गान संहिताओं का विस्तृत वर्णन है। ये 3 गान संहिताएं हैं, 1 देवहु संहिता, वाक् शबहु, 3 अमित्रहु। इनके स्वरूप और फल का वर्णन है। देवहु संहिता का उच्चारण मंत्र स्वर से होता है। इसके गान से देवता शीघ्र पधारते हैं। देवहु के उद्गाता को धन धान्य श्री की प्राप्ति होती है, यह कल्याणकारिणी है। अन्य 2 संहिताओं अमंगलकारक है। वाक् शबहु में अस्पष्ट उच्चारण के कारण उद्गाता को हानि होती है। इसी प्रकार अमित्रहु अशास्त्रीय गान के कारण हानिकारक है। संहिता का एक अन्य प्रकार से विभाजन किया गया है, 1 शुद्धा, 2 दुष्पृष्ठा, 3 निर्भुजा। शुद्ध और मधुर स्वर से उच्चरित सामगान शुभ है, अशुद्ध और असंगत सामगान सदा कष्टकारी है। खंड 2 और 3, इन 2 खंडों में सामगान का शास्त्रीय विवेचन है। इनमें सामगान की विधि, स्तोम अनुलोम स्वर तथा विविध स्वरों का विशेष विवेचन है। ये अध्याय शास्त्रीय गान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। खंड 4 और 5, इनमें पूर्वोक्त विषय का ही विस्तृत विवेचन है। संहितोपनिषद ब्राह्मण की कतिपय विशेषताएं। 1, सामगान के शास्त्रीय विधि के ज्ञान के लिए ब्राह्मण अति महत्वपूर्ण है। टीकाकार द्विराज भट्ट का कथन है कि साम ब्रह्म के रसज्ञों को यह ब्राह्मण शास्त्रीय ज्ञान का शुद्ध रूप बताता है। साम ब्रह्म रस ज्ञानाम विशुद्ध ज्ञान हेतवे। 2, इसके तृतीय खंड में एक प्रसिद्ध सुभाषित विद्या हवै ब्राह्मण माजगाम दिया गया है, जिसका अभिप्राय है कि विद्या बहुमूल्य निधि है, इसे सुयोग्य सुपात्र जिज्ञासु और कृतज्ञ को ही देना चाहिए। अयोग्य अपात्र अजिज्ञासु और कृतज्ञ को कभी विद्या दान न करे। इन सुभाषितों को निरुक्त और मनुस्मृति ने भी उद्धृत किया है। इस ब्राह्मण की 2 टीकाएं हैं, 1 द्विजराज भट्ट कृत भाष्य, 2 सायण भाष्य वेदार्थ प्रकाश। इस ब्राह्मण पर सायण की अपेक्षा द्विजराज भट्ट का भाष अधिक विस्तृत और प्रामाणिक है। द्विजराज सायण से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। 8. वंश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। इसमें सामगान के प्रवर्तक ऋषियों और आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। प्राचीन ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए यह ब्राह्मण उपयोगी है। इसमें 3 खंड हैं। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना है। स्वयंभू ब्रह्मा से कश्यप तक तथा कश्यप से सर्वदत्त गार्ग तक की वंश परंपरा इस प्रकार दी गई है। स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने और अग्नि से कश्यप ने सामवेद प्राप्त किया। तदनंतर यह परंपरा कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग तक आई। इसमें अन्य कोई उल्लेखनीय विषय नहीं है। 9. जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद की जैमिनीय शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। ये हैं 1 जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनी आशय ब्राह्मण, 3 जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद की कौथुम और रामायणीय शाखा के साथ ही जैमिनीय शाखा भी प्रचलित रही। जैमिनीय शाखा वाले ब्राह्मणों में प्राचीन वैदिक रूप मिलते हैं। इनकी वर्णन शैली प्राचीन है तथा आख्यानों में भी पुरातनता मिलती है। अतः यह ब्राह्मण अन्य सामवेदीय ब्राह्मणों से प्राचीन ज्ञात होते हैं। जैमिनी ब्राह्मणों की भाषा शैली ब्राह्मणों के तुल्य है, जबकि कौथुम शाखा वाले ब्राह्मणों में सूत्र शैली भी मिलती है। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं। ये खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में 364 खंड, द्वितीय में 442 और तृतीय में 386। इस प्रकार खंडों की कुल संख्या 1192 है। मंगलाचरण के श्लोकों में महर्षि जैमिनी की स्तुति की गई है। उन्हें व्यास का शिष्य और तलवकार का गुरु बताया गया है। क. व्यास शिष्याम मुनये तस्मै जैमिनये नमः। ख. तम जैमिनीम तलवकार गुरुम नमामि। इस ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय 3 कांडों में विभक्त हैं, जिनका सार संक्षेप इस प्रकार है। कांड 1, इसमें अग्निहोत्र के 2 भेदों नित्य और काम्य का वर्णन। काम्य अग्निहोत्र अधिक प्रचलित था। खंड 66 से 364 तक अग्निहोत्र का विस्तृत वर्णन है। राजा वर्ष में 1 बार अग्निष्टोम याग करता था। राजकुमार द्वादशाह याग और अन्य लोग छंदस्य तथा अग्निहोत्र याग करते थे। कांड 2, इसमें एकाह 1 दिन वाला से लेकर द्वादशाह 12 दिन तक चलने वाला तक के याग का वर्णन है। इनके नाम द्विरात्र, तीरात्र, सप्तरात्र, नवरात्र, दशरात्र आदि हैं। इसमें 12 दिन से अधिक चलने वाले यागों का भी वर्णन है। वर्ष भर चलने वाले गवामयन का पूर्ण विवरण इस खंड वाले यागों का भी वर्णन है। वर्ष भर चलने वाले गवामयन का पूर्ण विवरण इस खंड में दिया गया है। शर्मा और पणि की कथा तथा भौगोलिक महत्व के अनेक नाम इस खंड में प्राप्त होते हैं। कांड 3, इसमें 12 दिन चलने वाले द्वादशाह यागों का विस्तृत वर्णन है। अनेक सामों का भौतिक लाभ के लिए उपयोग बताया गया है। इसमें अनेक भौगोलिक तथ्य वर्णित है। अथर्वन के पुत्र दधीच की कथा विस्तार से दी गई है। डॉक्टर रघुवीर ने इस ब्राह्मण ग्रंथ का उद्धार किया है। यह विशालकाय ग्रंथ है। समग्र संस्कृत पाठ्य पाठ भेद सहित 450 पृष्ठों में दिया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण में अधिकांश सामग्री समान है। जैमिनीय ब्राह्मण में विषय वस्तु का विवरण अधिक विस्तृत है। जैमिनीय ब्राह्मण के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ। 1. अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। 2. भूर्भुवः स्वः। इन 3 महावृत्तियों को सारे पापों का प्रायश्चित कहा गया है। ये सारे पापों को दूर करने में समर्थ हैं। 3. गायत्री का महत्व बताते हुए कहा गया कि यह तीनों सवनों प्रातः, मध्याह्न और सायं की आत्मा है। यह तीनों सवनों को यथास्थान देवों तक पहुँचाती है। 4. कितने देव हैं इसका विचार करते हुए कहा गया है कि मुख्य रूप से 33 देव हैं। इनका ही विस्तार 303 और 3003 देवता हैं। 33 देवों के नाम बताए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। 8 वसुओं के नाम हैं अग्नि और पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष, सूर्य और द्युलोक, चंद्रमा तथा नक्षत्र। 11 रुद्र हैं, 10 प्राण और आत्मा, 12 आदित्य हैं, 12 मास। सर्वोत्तम एक देवता कौन है इसका उत्तर दिया है प्राण। साथ ही वसु, रुद्र और आदित्य का निर्वचन भी दिया है। 5. सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 6. उद्गीत का महत्व वर्णन करते हुए कहा गया है कि उद्गीत ही ब्रह्म है। उद्गीत की 4 वेद है। उद्गीत ही सारे विश्व को धारण किए हुए है। इस प्रकार ओम की उपासना ब्रह्म की उपासना है। 7. इसका एक सुभाषित बहुत प्रसिद्ध है, ऊंचा मत बोलो, मकान के भी कान होते हैं। मोचैरिति होवाच करणिनी वै भूमि रीति। 10. जैमिनी आर्षीय ब्राह्मण कौथुम शाखा के आर्षीय ब्राह्मण के तुल्य। इसमें भी स्वाध्याय और यज्ञ की दृष्टि से ऋषि देवता और छंद के ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। दोनों ब्राह्मणों के वर्ण विषय समान है। सामवेद के ऋषि से संबद्ध विवरण इसमें दिया गया है। ग्राम गेय गानों के ऋषि विवरण में अध्यायों और खंडों की व्यवस्था और विन्यास प्राय समान है। दोनों शाखाओं की संहिताओं में कुछ अंतर होने के कारण गानों के क्रम में अंतर है। कौथुम शाखा के आशय ब्राह्मण में गानों के वैकल्पिक नाम दिए गए हैं, वे इसमें नहीं है। यह कौथुम आशय ब्राह्मण की अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। 11 जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, इसको जैमिनी तलवकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनी ब्राह्मण के मंगलाचरण में जैमिनी को तलवकार ऋषि का गुरु बताया गया है। इस प्रकार यह जैमिनी ऋषि के शिष्य की रचना है। यह ब्राह्मण 4 अध्याय में विभक्त है। अध्यायों के उपविभाग अनुवाक और खंड है। प्रारंभ में ओमकार और हिंकार के महत्व का प्रतिपादक किया गया है। सृष्टि विद्या का संबंध तीनों वेदों से है। ओम से गायत्री की रचना हुई है। गायत्री से ही प्रजापति देवता और ऋषि अमर हुए। गायत्री अमृत है। तदे तद अमृतम गायत्रम एतेन वै प्रजापतिरमृतत्वम अगच्छत एतेन देवाः एतेन ऋषयः। इस ब्राह्मण में यह वर्णन है कि यह पवित्र ज्ञान ब्रह्म से कश्यप ऋषि तक किस क्रम से गया। इसके अनुसार ब्रह्म से प्रजापति परमेष्ठी सविता अग्नि इंद्र कश्यप तत्पश्चात कश्यप से गुप्त लौहित्य तक यह ज्ञान किस परंपरा से गया, इसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें ऋषियों की लंबी सूची दी गई है। वंश ब्राह्मण ने भी मानवों में सर्वप्रथम कश्यप ऋषि को यह पवित्र ज्ञान प्राप्त होने का उल्लेख किया है। इसके पश्चात केन उपनिषद है। इस ब्राह्मण में अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य याग विधियों का विशेष उल्लेखनीय है। यह ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद के अधिक निकट है। इस ब्राह्मण का छांदोग्य उपनिषद से घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। दोनों के वर्ण विषयों में बहुत साम्य है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण के कुछ प्रमुख संदर्भ। 1. ओम का महत्व। इस ब्राह्मण में ओम के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। ओम ही परम ज्ञान और बुद्धि का आदि कारण है। ओम से ऊपर कोई नहीं उठ सकता। ओम की उपासना पर बहुत बल दिया गया है। यह ओम भूर्व स्वः का सार है। ओम अक्षर है, अविनाशी और अमृत है। ओम वेदों का मूर्धन्य है। ओम का विस्तार तीनों वेद है। जिस प्रकार कोमल पत्तों में सुई प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार तीनों लोकों में ओम व्याप्त है। 2. गायत्री की महिमा। गायत्री गान करने वाले की रक्षा करती है। गय और गाय का अर्थ है प्राण। प्राण की रक्षा करने के कारण यह गायत्री है। ब्रह्म का ही नाम गायत्री है। 3. इसमें वैदिक भाषा शब्दावली और व्याकरण के प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। इसमें अनेक प्राचीन देवशास्त्री आख्यान वर्णित हैं। इसमें प्राचीन मान्यताओं और रीतियों का उल्लेख है, जैसे मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना, प्रेतात्माओं के द्वारा मार्ग निर्देशन, अतिमानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए श्मशान साधना आदि।